आज जो है भगवान विष्णु के ध्यान की बात है, फिर आगे जाकर के औकात मिले तो पूजा की बात भी कही जा सके है। ये तो खास करके आज भगवान विष्णु के ध्यान को ही विषय है। बहुत दिनों से एक प्रकार से यो प्रस्ताव चल रहे हैं। कल जो है या मन में विशेष बात हुई थी कि ध्यान रोज एक दफा होना चाहिए, चाहे सगुण भगवान को हो चाहे निर्गुण भगवान को। मैं यह बात कही, सुनने वालों को विशेष उत्साह हुए तभी ध्यान के विषय की बात कही जा सके। यह भी बात हुई ही, पहले तो मन के बीच के मन ये उत्साह रहते हो, मन के बीच में यह बात रहती कि ध्यान तो अपने आपकी बात, स्वतंत्रता की बात है। जिसे को ध्यान नहीं लगे, बैंक को भी एक प्रकार से लगाया जा सके, बैंक की यदि इच्छा हो। पर बहुत वर्षों से मन के बीच के मां थोड़ी धीराई आ गई, लोगों को उत्साह कम देख करके। करने वाले भाई लोग भी यदि इस प्रकार से मदद करे कि यहाँ खूब ध्यान लग सके है, और अवश्य ही लगना चाहिए। मैं भी कोशिश करूं कि आप लोगों को ध्यान लगे, और थे भी कोशिश करो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक और विश्वास पूर्वक कोशिश करो कि भाई जरूर ध्यान लगे हो तो लग सके है। इसमें ध्यान करने वाले की श्रद्धा और प्रेम पर निर्भर है। ध्यान करने वाला जो पुरुष है उसके श्रद्धा और प्रेम पर निर्भर है। यदि वो एक सच्चे दिल से और बहुत उत्साह के साथ के वहां यदि कोशिश करे ध्यान लगने के लिए, और बात श्रद्धा पूर्वक सुने और प्रेम पूर्वक सुने, और सुनने के साथ में उसी प्रकार से सुन करके कि उत्साह साथ में ध्यान कर तो चले जाए, जो बात सुनी उसी प्रकार को चित्र भगवान को, खास भगवान को स्वरूप, चेतन स्वरूप भगवान को देखे। एक तो भगवान की मूर्ति हो है, एक चित्र हो है, चित्र को और मूर्ति को ध्यान नहीं, साक्षात भगवान को ही ध्यान। जैसे एक यो तो मेरा शरीर है और एक है मेरे शरीर को फोटो हो है, तो फोटो को जो ध्यान है वो तो बहुत समझो कि निजी चीज है, और मैं स्वरूप को जो ध्यान है खास चेतन को शेष बात, तो अपने साथ साथ भगवान के स्वरूप को ही ध्यान करना है, भगवान की मूर्ति को नहीं, भगवान के चित्रपट को नहीं। जैसे भगवान की जो मूर्ति पाषाण की हो, धातु की हो, मैं को नहीं, मैं मूर्ति वाले माँ मूर्ति है जिसको को असली जो स्वरूप है मैं को ध्यान कर। प्रथम तो ध्यान के वहां बहुत स्वतंत्रता है कि मनुष्य चार जगह ध्यान कर सके। यदि कहो कि बिना देखी हुई बात को कैसे हो तो हो सके, सुनकर के हो सके, पुस्तकों के वहां पढ़ करके हो सके, हाँ यह हो सके कि साक्षात भगवान ने जब तक नहीं देखा है तो थोड़ा फर्क रह सके, तो कोई रिस्क की बात नहीं है। अपने मन को आकर्षण करने वाला ऐसा भगवान को स्वरूप होना चाहिए, फिर साक्षात लोगों को फल है। जब साक्षात भगवान प्रकट होकर के अपने दर्शन दे दिए हुए तब साक्षात भी हो सके। वास्तु के मां तो यह बात भी अपने श्रद्धा और प्रेम पर निर्भर करे, श्रद्धा प्रेम हुए तो भगवान साक्षात भी प्रकट हो सके। भगवान को साक्षात के प्रकट होने को भगवान ने भय नहीं है, और इस कलयुग के बीच के मां सुगमता भी है और छूट भी है। भगवान के नाम के जब को महात्म, भगवान की भक्ति को महात्म सभी युगों के मां है, किंतु कलयुग के मां विशेष है। इस नाते से थोड़ा प्रेम होने से और थोड़ी भी भक्ति होने से भगवान दर्शन दे देवे तो यह बात युक्ति संगत है, शास्त्र संगत भी है। फिर भी थोड़ी भक्ति, थोड़ा प्रेम तो होना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास होने से ही भक्ति और प्रेम को प्रादुर्भाव है। तो भगवान के मां विश्वास होना चाहिए कि भगवान है और भगवान मिला है, भूता ने मिला है और आपा ने भी मिल सके है। पात्र ने तो मिले भी है, पात्र ने तो मिले ही है और कुपात्र ने भी ऐसा मिले है, क्योंकि वे दया सागर है और पतित पावन है। भगवान दया सागर है, भगवान पतित पावन है, भगत वत्सल है। जब ये बात है तो फिर पात्र हो कि अपात्र हो, भक्त वत्सलता में तो फिर पात्रता की आवश्यकता है। और दया सागर और पतित पावन के शब्दों के बीच के मन तो पात्रता की भी आवश्यकता नहीं। यदि पात्र को ही दर्शन हुए तो फिर उसको नाम पतित पावन कैसे? पात्र को ही दर्शन हुए तो फिर वह दया सागर क्या हुआ? तो उनकी दया से भी विशेष बात हो सके है। और पतित पावन जो उनको नाम है ये भी विशेष अधिकार रखे। इसमें तो साधक जो है उसके दिल में जो विश्वास तो अवश्य होना चाहिए कि इस प्रकार से कुपात्र ने भी दर्शन हुए, ये इतना विश्वास तो अवश्य होना चाहिए। ये जो विश्वास है इतनी श्रद्धा से भी काम चल जावे, ये दृढ़ विश्वास हो जावे कि मैं पात्र तो नहीं हूं किंतु भगवान के दया के प्रभाव से उनका दर्शन हो सके, जैसे भरत जी को भाव है। जनया वे गुण प्रभु देखन काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाऊ। भरत जी का ये भाव है कि मैं कपटी हूं और कुटिल हूं, किंतु भगवान अपने दास के अवगुणों की तरफ नहीं देखते हैं। जाने अवगुण प्रभु देखे न काहू, किसी भी अपने दास के अवगुणों की तरफ ख्याल ही नहीं करते। भगवान जो है सो दीन जो उनके बंधु हैं और उनका स्वभाव बड़ा कोमल है। इस सिद्धांत को सामने रख करके और भगवान का जो वृद्ध है उनको सामने रख करके और भरत जी के विश्वास है कि भगवान के दर्शन मुझको होंगे, इसी प्रकार हम लोगों को भी ये मन में विश्वास करना उचित है कि भगवान जब ऐसे हैं और उनको दर्शन हुए तो हम लोगों को क्यों नहीं हो। और ध्यान की जो बात है वो तो साधारण बात है, ध्यान तो करने में मनुष्य स्वतंत्र भी हैं और भगवान की भी मदद है। शास्त्र की और महापुरुषों की और ईश्वर की तो स्वाभाविक सदा ही हम लोगों पर दया है, और वे तो हमारे इस काम के मां सदा ही मदद करते रहते हैं। अब हमारी माने मनुष्य अपने आप की आप पर दया होनी चाहिए, अपने आप की आप पर दया होने का अभिप्राय यह है के विश्वास करके के और ध्यान के लिए कोशिश कर दीजिए, यही अपने आप के ऊपर आपकी दया है। कई बहनों का यह कहना था कल कि ध्यान तो एकदम साक्षात लगना ही चाहिए, जैसे पूर्व के जमाने में लग गया करता था, ध्यान तो लग ही जाना चाहिए। और जब भगवान के दर्शन होते हैं और वे भी हो जावे तो समझो कि और भी अवभाग्य की बात है। हम लोगों के जो आसन की तरफ ख्याल किया जाए, प्रेम की तरफ ख्याल किया जाए, तब तो हम लोग पात्र तो है ही नहीं। अरे जी कुपात्र को भी हुए हैं, और यह बात एक प्रकार से भगवान को वृद्ध है, तो उस नाते से हम अपात्र भी दर्शनों के लिए उत्सुक हैं। तो जिनके में उत्साह हो और यो विश्वास होना चाहिए कि अपात्र को भी होए, और भगवान के वृद्ध की तरफ ख्याल करना चाहिए, तो फिर भगवान के लिए कोई कमी नहीं। ये नहीं कि हम बहुत आदमी हैं, उनके लिए एक प्रकार से भगवान के कोई जगह नहीं हुए, या इस कलयुग को देखकर भगवान डरते हो। नहीं, कलयुग के लिए तो रियायत की है, कलयुग के लिए तो छूट दी है भगवान ने। तो ध्यान के पूर्व हम लोगों को यथायोग स्थान में जैसे बैठे हैं, सावधानी से बैठना चाहिए। यदि आसन लगा सके तो आसन लगा करके, और नहीं तो शरीर को तो सीधा रखना चाहिए। पीछे की जो हड्डी है वो सजा माने सीधी रहनी चाहिए, अपने मस्तक गिरना नहीं चाहिए, खड़ा रहना चाहिए, और कमर भी नहीं गिरनी चाहिए। इस प्रकार सजा बैठने से आस नहीं आता, और ध्यान और दर्शनों का उत्साह रहने से विक्षेप नहीं होता। आसन पे बैठ करके फिर भगवान का आह्वान करना चाहिए। आह्वान का यह मतलब है कि भगवान के नाम का उच्चारण करके भगवान को बुलाना चाहिए, ये उसका आह्वान है। किसी मनुष्य का हम आह्वान करते हैं तो उसके नाम का उच्चारण करके पुकार से, ऐसे भगवान को पुकारना चाहिए, और करुणा भाव से पुकारना चाहिए। हृदय के बीच के वहां श्रद्धा प्रेम और करुणा भाव अवश्य रहना चाहिए। श्रद्धा माने विश्वास, और हृदय के वहां प्रेम भाव और करुणा भाव। भगवान जब आते हैं ध्यानावस्था के, वहां भगवान के जब दर्शन होते हैं उसके पहले ही वातावरण का सुधार हो जाता है। प्रत्यक्ष में शांति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, और भगवान का जो महान जो ज्ञान स्वरूप है, प्रथम भगवान ज्ञान स्वरूप से प्रकट होते हैं, तो मन बुद्धि इंद्रियों के बीच के वहां एक ज्ञान की चेतनता की जागृति हो जाती है, और मन में बुद्धि में इंद्रियों में रोम रोम के बीच के वहां वो चेतनता वो जागृति प्रत्यक्ष अनुभव होती है। उसके बाद के बीच के वहां भगवान एक महान प्रकाश के रूप में प्रकट होकर के, और अपने स्वरूप में अपने विग्रह के बीच के वहां प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु का नाम ही नारायण है, इस वास्ते नारायण शब्द का उच्चारण करना चाहिए, नारायण के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन एक स्वर और एक ताल से होना चाहिए। कीर्तन के समय के बीच के वहां खूब प्रेम रहना चाहिए, और ये भाव होना चाहिए कि भगवान भी गुप्त रूप से थी, जहां कीर्तन होता है वहां रहते, और कोई नए तो आगे बोले और नए पाछे बोले एक साथ, और नए जोर से बोले और नए धीमा बोले, पर सामान रहूं। और ये विश्वास करना चाहिए कि भगवान अवश्य ही समझो कि ध्यानावस्था में आएं, और उनका ध्यान होगा, और इसमें कोई शंका नहीं, इस प्रकार से मन में विश्वास करना। इस प्रकार से ध्यान की बात कही जा, उसी के अनुसार करने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण निराकार जो परमात्मा का स्वरूप है वही सगुण निराकार के रूप में प्रकट होकर के और निर्गुण निराकार जो परमात्मा सगुण निराकार के रूप में प्रकट होकर के और सगुण साकार रूप में प्रकट हो जा करते हैं। तो निर्गुण निराकार रूप से तो सब जगह केवल आकाश की मापक भगवान सदा ही व्यापक है ही। जैसे आकाश के बीच के मां निराकार रूप से जल सदा ही रहता है और वे निराकार जो जल है परमाणु के रूप में वही जल मेघ के रूप में परिणित होता है बदल के रूप में और फिर उसके बाद के मां वे बूंदों के रूप में बरसता है और फिर वह बर्फ या ओलों के रूप के मां परिणित होकर के बर्फ। तो जैसे बर्फ और ओला है जो उनको एकदम जल को साकार रूप है, बूंदा भी साकार रूप है किंतु बर्फ की अपेक्षा कुछ सूक्ष्म है और बादल भी साकार रूप है किंतु वो बूंदा से भी सूक्ष्म है और आकाश के बीच के मां जो सदा चंद्र की निराकार रूप से रहते हैं वो जल को निराकार रूप है, वो दृष्टिगोचर नहीं हो सके और दूरबीन से भी नहीं दिख। तो है या नहीं है इसको प्रमाण, इसको जो प्रमाण है कि यदि नहीं जल हो तो जल आवे कहां से आकाश से, जल बरसते ही रहे तो है तो सही किंतु वो निराकार रूप में है इस वास्ते दिख है नहीं है। इसी प्रकार से भगवान निराकार रूप में जब तक रहते दिखते नहीं है, उनका जो साकार रूप दिखता है साकार भी एकदम महान प्रकाश के रूप में प्रतीत होते हैं एक देशी नहीं। तो जैसे सब जगह ये प्रकाश दिखता है सूर्य की रोशनी, इस प्रकार से भी महान रोशनी के रूप में भगवान दिखते हैं और फिर वे एक प्रकार से अपने विग्रह के रूप में दिखते हैं। तो निर्गुण निराकार रूप से जो भगवान हैं वे रहते तो प्रथम निराकार, किंतु आपने दिव्य गुणों करके जो संपन्न है उस गुणों के स्वरूप में उनका प्रादुर्भाव होता है। उनका जो सत्यचिताणु धन जो रूप है, उनकी जो सत्ता है कि भगवान है, वे भगवान एक प्रकार से थी चेतन के रूप के बीच से वहां उनका विकास होकर के और वे फिर आनंद के रूप में तो दिखते। जब चेतन रूप का विकास होता है तो सबके शरीर के बीच से वहां चेतनता आ जाती है, मन बुद्धि और इंद्रियां के वहां सबके वहां चेतनता आ जाती है, यानी ज्ञान की जागृति हो जाती है, बोध की जागृति हो जाती है और बड़ी प्रसन्नता और बड़ी शांति और समझो की और बहुत ही आनंद सब प्रतीत होता है। तो अब ये समझना चाहिए कि भगवान का फिर आह्वान करना, इस आह्वान के बीच के मां भगवान ज्ञान और आनंद के रूप में उनका प्रादुर्भाव है। निर्गुण निराकार के रूप में तो है ही सत्य चिदानंद घन जो भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप है उसमें तो सदा ही है। अब ये भगवान संजो की अपने ज्ञान के रूप में बोध के रूप के बीच के मां और उनके जो गुण जो है प्रेम उनका स्वरूप है, ज्ञान उनका स्वरूप है और वे अपने दया के सागर हैं, समता उनका स्वरूप है, सब जगह के मां व्यापक हैं, उस सम रूप से और व्यापक रूप से जब उनका प्रादुर्भाव हो जाता है तो सब जगह समान उनकी सत्ता प्रत्यक्ष के मां पर दिखती है और मानो हम लोग आनंद के सागर के मां डूबे हुए हैं ऐसा उसका आनंद का प्रादुर्भाव रूप दिखता है और ज्ञान की एक प्रकार से बाहुलता जो अपने मन में बुद्धि में इंद्रिया में सब जगह के बीच के मां प्रसन्नता और शांति और आनंद और ज्ञान की बाहुलता ये सब चीज एकदम प्रत्यक्ष की मां का अनुभव। तो अब करुणा भाव से प्रेम भाव से उसका आह्वान करना चाहिए, गदगद वाणी से और प्रेम के मां मुग्ध होकर के करुणा भाव से उसको पुकारना चाहिए, बुलाना चाहिए। नारायण नारायण परिपूर्ण हो रहे हैं हमारे मन में बुद्धि में इंद्रियों में शरीर में रोम रोम के बीच के मां जर जर के बीच के मां अणुअणु के बीच के मां आनंद ही आनंद परिपूर्ण हो रहे जैसे बादल के बीच के मां आकाश परिपूर्ण है, बादल का अमुमात्र भी कोई स्थान खाली नहीं कि जहां आकाश न हो, इस प्रकार से थी हमारे मन बुद्धि इंद्रियों में और संसार में कहीं एक अनुमात्र भी को ऐसा स्थान नहीं कि जहाँ आनंद में हो। तो इस प्रकार से भगवान विज्ञानान घन के रूप में तो प्रत्यक्ष के मां पर उनका प्रादुर्भाव है। देखो कैसी शांति हो रही है, अब ऐसी अवस्था के बीच के वहाँ कोई प्रकार की पूर्णा या विक्षेप या संकल्प तो हो ही नहीं सकता। और कैसी मन में बुद्धि में इंद्रियों के वहाँ जागृति हो रही है, माने चेतनता की जागृति, तो ऐसी परिस्थिति के वहाँ ऐसी जागृति के बीच के वहाँ आलस कैसे आ सकता। आनंद की बाहुलता के बीच के वहाँ पूर्णा नहीं हो सकती, और चेतनता की बाहुलता के बीच के वहाँ आर्थ नहीं आ सकता। दो जो महान विघ्न है उनकी सामर्थ्य नहीं है कि एक प्रकार से थी उनका कोई हम लोगों पर असर हुए, क्योंकि जब भगवान की दया है और भगवान एक प्रकार से थी सब जगह समान भाव से प्रत्यक्ष है, ये भगवान का सगुण निराकार स्वरूप है। ये आकार तो नहीं है किंतु एक प्रकार से ये दिव्य गुण है, दिव्य गुणों करके संपन्न सब जगह के वहाँ समान भाव से, जैसे आकाश सब जगह के वहाँ समान है, जो भगवान सब जगह के वहाँ समान भाव से है। जैसे आकाश का गुण शब्द है तो भगवान के वहाँ अनंत गुण है, दया क्षमा शांति क्षमता संतोष सरलता और बात्सल्यता, ये भगवान के वहाँ अनेक गुण है। भगवान समझो कि परम दयालु परम प्रेमी परम सूर्य, तो ये भगवान का सब जगह के बीच के वहाँ निराकार स्वरूप है। जैसे आकाश के कोई आकार नहीं, ऐसे भगवान के निराकार, भगवान के आकार जिनका नाम ही निराकार है कि मया तद विदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्ति नाम, तो भगवान ने गीता की नौवें अध्याय के चौथे श्लोक के आरंभ में यह बात कही है कि यह सारी संसार मुझे निराकार स्वरूप से थी परिपूर्ण है, मैं इनका वहाँ व्यापक हूँ या व्याप है। तो इस प्रकार से थी या संसार जो जज जो संसार है वो चेतन परमात्मा से एकदम परिपूर्ण और परिपूर्ण है, परमात्मा इसमें व्यापक है।